पत्नियों से ईर्ष्या का सूचक है। ग्रह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक ग्रह मेधी का दूसरे ग्रह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के परम कष्टों, जन्म मृत्यु जरा या व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह में भी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, जैसा कि भगवत गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक में कहा गया है। वहां जगत के सारे क्लेश तथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते, वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं और वे यह नहीं जानते कि इस सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ गलत साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए ग्रह मेधी न बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। पहली बार सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बोलना शुरू किए हैं, जिसे कल हमने चर्चा किया। परीक्षित महाराज ने जब समझा कि उन्हें ये श्राप मिला है कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, जीवन का उद्देश्य के बारे में सतर्क होने के कारण उन्होंने सर्वस्व त्याग कर गंगा जी के तट पर आ बैठे। गंगा जी का आश्रय लेने का मतलब यह था कि भगवान के चरणामृत भगवान से, चरणों से निकली हुई। तो गंगा जी के तट पर आने का मतलब है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। इस भावना से वो गंगा के तट पर आए और जब ये खबर सब फैली तो पूरे ब्रह्मांड से महान ऋषिगण, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषिगण एकत्रित हुए थे। इसके अलावा भगवान की इच्छा के अनुसार वहां परम भागवत सुखदेव गोस्वामी महाराज का आना हुआ। परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के सम्राट थे उस समय, उन्होंने इन ऋषियों के सामने 2 प्रश्न रखे। हर एक व्यक्ति के लिए सबसे परम कर्तव्य क्या है हम हर समय के लिए, और खास करके जो मृत्यु के करीब पहुंचा है उसका कर्तव्य क्या है। अलग अलग ऋषियों में अलग अलग मत था, पर जब सुखदेव गोस्वामी वहां पधारे तो सब लोग उन्हें सम्मानित किए, उनको आसन दिया, जानते थे कि वो अधिकृत उत्तर देंगे, योग्य उत्तर देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने शुरुआत की, सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसी के चलते हम भी जब भी भागवत के ऊपर प्रवचन करते हैं तो हम भी उस परंपरा में आते हुए ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने चर्चा किया कि किस प्रकार भगवते यानी भगवान एक व्यक्ति, और वासुदेवाय मतलब सर्वव्यापी। भक्त के अलावा और कोई भी इस तत्व को जान नहीं सकता कि एक व्यक्ति सर्वव्यापी होते हुए भी, पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में सर्वव्यापी होते हुए भी एक व्यक्तित्व को कैसा रख सकता है। वो सिर्फ भक्त ही जान सकता है। क्यों? भक्त्यावाम अभिजानाती यावान यश्चास्म तत्वतः। अगर भगवान को तत्वतः जानना है, तत्व से जानने का मतलब क्या, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते सर्वं खल्विदं ब्रह्म। अपने मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में भगवान जिस प्रकार एक सूरज अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि में फैली हुई है, इसी तरह से भगवान हरेक, कोई ऐसा जगह नहीं है जगह भगवान नहीं है, अपनी शक्ति के द्वारा वो सर्वव्यापी है। और परमात्मेति अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम, हर एक कण कण में, हर एक एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब एक न्यूक्लियस रहता है, वो न्यूक्लियस वो क्यों घूमता है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूमता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि वहां परमात्मा है। कौन सी शक्ति उसको बना घुमाए रखती है इस तरह से, भले वैज्ञानिक उसको कुछ भी नाम दे पर कौन बांध के रखता है, साइंटिस्ट बांध के रखा है क्या उधर, वो उसको सिर्फ नाम दे सकता है, पर वो बांध के रखने वाले हैं परमात्मा। निर्जीव वस्तु में भी और जीव वस्तु में तो है ही परमात्मा, निर्जीव में भी है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, हर एक कण कण में परमात्मा के रूप में, और सब खबर उनको मिलते रहता है, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मी दिशाप्युक्तो देहे स्मिन पुरुषम परम। और फिर भगवान सूर्यदेव, सूर्य ग्रह और सूर्य किरण, इस तरह से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और वदन्ति तत्त्वविदस, ये इसको कहते हैं तत्वतः जानना। और कैसे जान सकते हैं तत्वतः, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति के द्वारा। और वो भक्ति कैसे मिलती है, जब शुद्ध भक्त के चरण कमरों में जाते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी जो भगवान को तत्वतः, भगवान परमात्मा और ब्रह्म, ये तीनों स्थिति में जानता है, ऐसा व्यक्ति ही संपूर्ण रहस्य को समझ सकता है। नहीं तो गीता और भागवत का रहस्य भक्त के अलावा कोई भी विद्वान, कोई भी दार्शनिक, कोई भी वैज्ञानिक, कितना भी बुद्धिमान, बृहस्पति जैसा बुद्धि क्यों ना हो, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम्। अर्जुन तुम ये रहस्य को जान सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर दो योग्यता है, भक्तोसि मे, तुम मेरे भक्त हो, यानी तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। भक्त कौन है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता? क्यों? क्योंकि भगवान बनने की इच्छा नहीं उसको, न इस संसार में छोटा मोटा भगवान बनने की इच्छा है, भोक्ता बनने की इच्छा है, न मायावादी के रूप में परम भगवान बनने की इच्छा है, बल्कि वो भगवान का दास बनना चाहता है। जब तक हृदय में दासत्व नहीं है तब तक भगवान बनने की इच्छा है, और जब तक छोटे मोटे भगवान या बड़े भगवान, मायावादी बड़े भगवान बनना चाहते हैं और कर्मी लोग हैं छोटे मोटे भगवान, घर का भगवान, अपना घर का भगवान। हरेक व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता है, हरेक व्यक्ति प्रभुत्व जमाना चाहता है, करोड़ों जन्मों से बड़ा अहंकार लेके आया हुआ है। तो जब तक भक्तोसी में सखा चेती, अर्जुन तुम ये रहस्य को समझ सकते हो कि मैं सर्वव्यापी भी हूं और एक व्यक्ति भी हूं। क्यों? क्योंकि तुम उसे ईर्ष्या नहीं करते। और सखा चेती, तुम्हारे तुम मेरे साथ एक संबंध रखते हो सखा के रूप में। प्रभुपाद जी गीता के शुरुआत में समझाते हैं, कौन गीता को जान सकता है? जिसके अंदर भक्ति है, यानी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता बल्कि भगवान की सेवा करना चाहता है, और भगवान के साथ संबंध। अरे संबंध तब जोड़ सकते हो जब एक व्यक्ति हो, हवा के साथ संबंध क्या जोड़ोगे तुम? संबंध जोड़ना मतलब दो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है। तो जब तक भगवान को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं करोगे और उनका मूल स्वरूप नहीं जानोगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और अपना स्वरूप नहीं जानोगे भगवान के संबंध में और उस सेवा में लगोगे नहीं, तब तक भागवत हमारे लिए, गीता भागवत सारा तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल सेवा, श्रवणम कीर्तनम की जो सेवा है, इसीलिए प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए थे, उनको बोले तुम जस हरे कृष्ण जपो, बस सुनो और जपो, श्रवणम और कीर्तनम सुनते रहो बस, और नाम लेते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, उससे पहले कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। श्रवणम कीर्तनम, नाम के बारे, भगवान के नाम, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में सुनना श्रद्धालु भक्तों के संग में, और नाम जप करना, कीर्तनम, तभी समझ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति यानी भगवान को प्रसन्न करने का कोशिश, भगवान बनने की इच्छा नहीं, छोटे भगवान या बड़े भगवान, भगवान बनने की इच्छा नहीं, भगवान की सेवा से भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। और जब तक वो प्रसन्न करने की इच्छा 100% निस्वार्थ नहीं हो, तब तक पूर्ण भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। आप 2% निस्वार्थ रहोगे तो 2% कृपा मिलेगी। अहैतुकी अप्रतिहता, ऐसा नहीं कि संडे के दिन भक्ति और सोमवार से शनिवार छुट्टी, तो कृपा भी भगवान की छुट्टी। आपको संडे को 2 घंटे के लिए कृपा मिलेगी बस। अहैतुकी अप्रतिहता येना येन आत्मा सुप्र सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका इतना मतलब है। हम लोग सिर्फ बोल देते ओम नमो भगवते वास, जल्दी शुरू करो यार, लेट हो गया, टाइम हो गया, बट एक्चुअली ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब यही है कि उनकी कृपा के बिना हम एक चीज, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कार्य कुछ नहीं कर सकते, हमेशा पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर है। इसीलिए हम पूरे परंपरा को प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की कृपा से आज हमारा जीवन सफल होने का संभावना है अगर उसको स्वीकार करें तो, उस कृपा को। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी मुंह नहीं खोल रहे थे, पागल जैसे घूम रहे थे चुपचाप नंगे होकर, उनको पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, किसी से बोलते भी नहीं थे, लोग पत्थर मार रहे थे, कोई थूक रहा था, कोई कचरा फेंक रहा था उनके ऊपर, कोई चिंता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको। पर जब एक व्यक्ति दिखा जो अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, जिसका प्रश्न का उत्तर न केवल उसको लाभप्रद है, न केवल बोलने वाले को लाभप्रद है, पर लोकहितम वरियान एशते प्रश्न। बहुत खुश हुए सुखदेव गोस्वामी, एक क्षण एक जगह दो मिनट नहीं ठहरते। सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्तियों का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है, और वो किसी के गृहस्थ के घर में भी जाते हैं तो बस 5-10 मिनट के लिए ठहरते हैं, जब तक दूध दोहते हैं दूध पी के निकल जाते बस, और दूध पीने के लिए नहीं जाते थे उधर, वो डांटते हैं लोगों को, क्यों ऐसे चापलूसी करते हो लोगों की, क्या क्या बोलते हैं पहाड़ों में गुफा नहीं है क्या, पेड़ों के खाल नहीं है क्या पहनने के लिए, सोने के लिए हाथ नहीं है क्या, जमीन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए जंगलों में फल नहीं है, तो फिर इतना इस जीवन को रखने के लिए हजार लोगों की क्यों चाटुकारी करते हो। तो ऐसे करने वाले गृहस्थों के घर जाएंगे दूध पीने के लिए, ऐसे जाते थे सिर्फ ऐसे लोगों को कृपा देने के लिए, यह उनका उद्देश्य था। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी गृहस्थ के घर में भी 2 मिनट नहीं ठहरने वाला, 7 दिन और 7 रात लगातार बैठे हैं बड़े प्रसन्नता पूर्वक, क्यों, क्योंकि ये देखिए कि योग्य व्यक्ति है। जड़ भरत भी किसी से बातचीत नहीं करते थे, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता, ऐसा उनको ऐसा अनुभव हुआ था कि कभी भी उन्होंने निश्चय किया किसी से मैं बोलूंगा नहीं, जड़ जैसा बैठे रहूंगा बस पागल जैसा। पर जब उन्होंने देखा कि रहुगुण उत्सुकता है उसको कृष्ण के बारे में सुनने में, आत्मतत्व जानने के लिए उत्सुक है वो, तब बोलना शुरू किया रहुगुण, जड़ भरत। भक्त जो है उसको आनंद तब होता है जब लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं कि महाराज ये बिजनेस कैसा किया जाए, कहां इन्वेस्ट करें आप बताओ, सिर्फ आप सर पे हाथ रख दो मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक हो जाए। ऐसे व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी बोलते तुम करो जो करना करो मेरे लिए, या सुखदेव गोस्वामी के अनुयायी भी हमको ऐसा होना चाहिए, इस चीज में इंटरेस्ट नहीं हमको। वरियान एशते प्रश्न, अरे बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, कृतो लोकहितम नृप, इस प्रश्न का उत्तर जो है पूरे लोगों का हमेशा के लिए हर जगह के लिए हित होने वाला है। आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिशु यह पुनः पर, आत्मवित सम्मत, सारे आत्म ज्ञानी सम्मति है, उनकी सम्मति है कि बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न कृष्ण के प्रति, नैमिषारण्य ऋषियों का प्रश्न सुत गोस्वामी के प्रति, और महाराज परीक्षित का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के प्रति, जिसके कारण गीता और भागवत प्रसंग सुनने को मिला हमें। और न केवल वहां उन लोगों को फायदा हुआ, 5000 साल बाद आज भी जो सुनता है इसी भावना से उनको भी वही फायदा होता है। तो श्रोतव्यादिशु यह परह, अरे भगवान ने कान दिया है, कान इसलिए दिया है और किसी लिए नहीं, वो कान जिसमें हरि कथा नहीं प्रवेश करता वो सांप के गड्ढे के समान, सांप भी छेद बनाते मन रहने के लिए, बोले छेद के समान, वो भी तो छेद है इधर भी छेद है बस, बहुत कठोर शब्द उपयोग करते हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रेम से घृणा से नहीं, कभी कभी ईर्ष्या से हम लोग बोलते हैं वाह कोई मौज कर रहा है तो मरने दो उसको, ऐसा होने क्या है, क्यों, क्योंकि मेरे को नहीं मिला उसको मिल रहा है, इसीलिए ईर्ष्या से नहीं बोल रहे हैं, बड़े कृपा से बोल रहे हैं, बोले क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना जीवन, क्या सुंदर उपहार मिला है तुमको भगवान की कृपा से, मनुष्य योनि मिली है, वरियाने सते प्रश्न। तो क्यों, क्योंकि पूरे विश्व के सम्राट परीक्षित महाराज मृत्यु की निकट आ गए हैं। जनरली साधारणतः कोई भी आदमी कितना भी जिया हो, खास करके अगर पैसे वाला हो, मृत्यु के पास आता है तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है एक, और दूसरा वो भगवान की माया शक्ति और फॉरगेटफुलनेस, विस्मरण, विस्मरण का आश्रय लेता है। आप देखेंगे भौतिक व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में मालूम नहीं है, वो जब शरीर छोड़ता है हमें भयभीत रहता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उधर क्या, इधर क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्या होगा, रोना शुरू होता है। आसपास भी वो लोग भी रो रहे हैं, ये भी रो रहा है, तो डर और भी बढ़ जाता है। और दूसरा चीज है भय का, भय, भयभीत रहता है और माया शक्ति का आश्रय लेता है और विस्मरण का आश्रय लेता है। पर महाराज परीक्षित को गुणगान क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि निर्भय थे वो। अभय चरणारविंदरे भजहुरे मनुष्य नंदनंदन, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय लेने के कारण एब्सोल्युटली फियरलेस, पूर्ण रूप से निर्भय थे और उन्होंने सत्य का आश्रय लिया था, परम सत्य का आश्रय लिया था। तो मालूम था मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और आत्मा भगवान की सेवा में लगने वाली वैसे भी। और इसीलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महाराज परीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर एस्किंग गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और इसीलिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा ताकि वो हरि कथा अमृत का पान कराए। हरि कथा अमृत, हरि कथा को अमृत, नामामृत, कथामृत, अमृत बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी ये पीता है मरता नहीं हो, जो भी हरि नामामृत और हरि कथामृत का पान किया है उसकी मृत्यु नहीं है, उसकी शरीर मर जाती है, शरीर जो है मर जाता है पर आत्मा जो है नित्य जीवन पाता है। तो इसीलिए घासलेट होता है, क्या बोलते हैं, केरोसिन, पहले में हम लोग इसमें डब्बा लाता था और बोतल ले जाते थे लोग, बड़ा बड़ा ड्रम या छोटा छोटा बोतल सब ले जाते थे और उसके पास पूरा बड़ा टैंकर होता था, टैंकर में वो पेट्रोल, वो क्या बोलते हैं, केरोसिन लाता है और उसका एक बड़ा फनल होता था, मालूम ऐसा ऐसा बड़ा फनल ऐसा करके उसका मुंह छोटा होता है और वो बोतल में घुसाते, सबसे पहले बोतल में घुसा के चालू करेगा वो, जैसे 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 बोतल भर गया बंद किया। ये उदाहरण आपने देखा होगा। तो जो टैंकर है वो टैंकर समझ लीजिए सुखदेव गोस्वामी है और ये जो बॉटल है ना वो परीक्षित महाराज, और ये जो फनल है वो फनल है हमारा कान। तो जब व्यासासन के पास आके बैठते हैं हमको लगना चाहिए हम एक बॉटल है, हमारा मन खाली है, पहले पहले बॉटल को खाली करो नहीं तो सब ओवरफ्लो हो जाए, कुछ है ही नहीं, बॉटल भर के लाओगे तो कुछ भी हो सब ओवरफ्लो, पहले खाली करो, खाली करके लाके बैठो व्यासासन के सामने, फिर जो भरने वाला है ये है, भरने वाले तो प्रभुपाद उनके तात्पर्य है, उनको प्रामाणिकता से हमारी योग्यता के अनुसार को, तो वो टांकी के समान है। श्रीमद् भागवतम रसमालयम, रस का आलय है ये श्रीमद् भागवतम रसमालयम, और बोलने वाला जो है वो एक टैप खोला उसने और उस समय एक ठीक से रखना चाहिए, वो बोतल के बाहर रहेगा ना सब बाहर चला जाएगा, वो फनल को ठीक से बोतल में रखो, मतलब ध्यान से सुनो। तो सुनेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 बोतल भरते जाएगा और एक समय में ओवरफ्लो होगा। तो हमारा मन उस बोतल के समान है और कान जो है फनल के समान है और हरि कथा वो अमृत है। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा भरते रहेंगे, पर ये इतना बड़ा बॉटल भरता ही नहीं है वो, और इसमें बहुत सारे लीकेज हैं, यहां भरा बाहर गया तो वहां घर पहुंचने तक सब लीक हो गया, कुछ रहा ही नहीं बॉटल ये समस्या है हमारा, बॉटल खाली हो जाता है उधर पहुंचने तक, डब्बे में इतने सारे छेद हैं तो बार बार भरना पड़ेगा और बीच बीच में थोड़ा सील करते रहना पड़ेगा ताकि सब कुछ तो ठहरे बॉटल के अंदर डब्बे में। नित्यम भागवत सेवयाम, बार बार सुनेंगे धीरे धीरे हमारा मन भरते जाएगा, और जब भर जाएगा तो दूसरे गंदगी नहीं आएंगे, दूसरे गंदगी आने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो यहां यहां बता रहे हैं, श्रोतव्याधीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, सुबह उठते ही इतना ठप्पी लगाकर न्यूज़पेपर लाता है आजकल, और क्या उसमें न्यूज़पेपर है, ऐसे ऐसे चित्र रहते हैं कि दूसरे लोगों के सामने बैठ के खोलने के लिए मुझे शर्म आता है, वो न्यूज़पेपर देखता ही नहीं हूं मैं डर के मारे। मां बाप बच्चों के सामने वो न्यूज़पेपर कैसा खोलेंगे मुझे मालूम नहीं होता, इतने गंदे गंदे चित्र रहते हैं उसके अंदर कि एक सज्जन दूसरे सज्जन के साथ बैठ के खोलने के लिए भी शर्म आना चाहिए आज के न्यूज़पेपर। और कितना, 35 पेज, 36 पेज, 200 पेज, 24 घंटा काफी नहीं हो सब पढ़ने के लिए। वो हो गया फिर जैसा प्रभुपाद कहते हैं राजनीतिक फिल्म मैगजीन, ये मैगजीन कचरे के पेटी जैसा कितना भरा रहता है, बार बार उसको भर रहे हैं हम लोग, ये सब चीज भर रहे हैं। श्रोतव्याधीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, अगले हाँ करेक्ट यही तो है, श्रोतव्याधीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, हजारों ऐसे विषय होते हैं भरने के लिए, दिन भर वही कान में भरते रहते हैं। और कैसे प्रश्न, कहां खाने को मिलेगा, कहां सोने को मिलेगा, कहां मैथुन मिलेगा, कहां, यही चलता रहता है हमारा। दुर्भाग्यवश अपश्यताम आत्मतत्वम, अपश्यताम आत्मतत्वम, क्यों, क्योंकि उनको मालूम नहीं है आत्मतत्व क्या है। प्रभुपाद जी समझाते हैं आत्मतत्व ज्ञान का मतलब क्या, जीव आत्मा जो है शुद्ध है, सच्चिद आनंद है, शुद्ध है, पर वो जीव जब आध्यात्मिक संसार से पतन होता है उसका, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गयान्ति परंतप, क्यों आया, भगवान बनने की इच्छा, द्वेष, इच्छा और द्वेष, भगवान बनने की इच्छा और सबसे द्वेष, क्योंकि हर एक व्यक्ति संसार में भगवान बनने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से द्वेष होना ही है। अगर एक सीट है और चार लोग उस सीट के ऊपर झगड़ रहे तो झगड़ा ही होगा ना, एक दूसरे से द्वेष करेगा, कॉम्पिटिशन रहेगा ही हमेशा, क्योंकि सीट एक ही है और लोग चार ले, तो भगवान का पोष तो एक ही है और लोग संख्या कितने हैं, हर एक व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, तो 100% द्वेषी होगा ही वो। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान्ति, तो जब शुद्ध सच्चिदानंद जीव भगवान बनने की इच्छा और भगवान से द्वेष करके इस संसार में प्रवेश करता है तो माया देवी उसको बोलती है आ बेटा, पहले गाजर दिखाती है, देख भगवान बनने का तरीका इधर आ, इधर आ, तो वो आता है। तो माया देवी एक शरीर को लेती है, कोई भी शरीर, 84 लाख योनियों में एक शरीर लेती है और आत्मा को लेती है और दोनों को एक गांठ बांध देती है, चल बेटा जन्म जन्म के साथी, शादी के समय करते हैं ना, इसका साड़ी और इसका धोती दोनों को लेके गांठ बांध गया, गांठ मतलब क्या, अभी हृदय में एक ग्रंथि बंध गया, और वो क्या है, अहंकार का, अहंकार का गांठ कि ये शरीर मेरा है, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये शरीर मैं हूं और शरीर से जुड़ा सारा चीज मेरा है, मैं इसका प्रभु हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, और ये गांठ करोड़ों 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 जन्मों से बांध बांध के इतना बड़ा हो गया है, इसको खोलते खोलते कई जन्म लग जाएंगे, इसको खोलने का टाइम नहीं, अभी एक तलवार लो, एक मार दो टुकड़ा, और वो तलवार क्या है, आत्मतत्वम, वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय जिसका सार है गीता और भागवत, सारे वैदिक वांग्मय पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता और भागवत श्रृण्वता अंशकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सहृत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नित्यं भागवत सेवया, ये कलमश जो है, ये ग्रंथि जो है, धीरे धीरे कटता जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, वो ग्रंथि निकल जाता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद आत्मा है। ये शरीर तो वैसे भी बूढ़ा होने वाला है, बीमारी होने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता मत करो। चिंता ये करो मृत्यु के बाद क्या, कहां जाने वाले हैं हम, फिर से और एक योनि, फिर से और एक योनि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। पर अपश्यताम आत्मतत्वम, लोगों को जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। और गृहेषु गृहमेधिनाम, प्रभुपाद जी समझाते हैं ग्रह स्थ और गृह मेधि में क्या अंतर है। मेधि का मतलब ईर्ष्या करने वाला, हर एक व्यक्ति प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, भोग करने की कोशिश कर रहा है, सृष्टि करके अपने आप को भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। मद्रास में एक बार 8 लोग अपने आप को कल्कि अवतार मान रहे थे, 8 लोग। तो टीवी वालों ने एक काम किया, सबको बुलाया इंटरव्यू के लिए, बोले आप कल्कि भगवान, आपका इंटरव्यू है पूरे विश्व के लिए, आप सब मैसेज देने के लिए आइए। उनको बुला के एक रूम में बैठा दिया, उनको नहीं मालूम कि 8ों को बुलाया, उसको लगा कि सिर्फ उसको बुलाया, उसको एक कमरे में बैठा दिया, फिर उसको बुलाया, उसको एक कमरे में, अलग अलग लोगों को, सबको अलग, सब भगवान को, 8 भगवान को अलग अलग कमरे में बैठा दिया। और एक क्षण में उसको तुरंत सबको 8ों को अंदर बुलाया, हरे को लग रहा था कि मेरे का इंटरव्यू होने वाला है। और वो इंटरव्यू ने ऐसा माइक हाथ में लिया और बोला ये कल्कि भगवान, ये भी कल्कि भगवान, ये इस एरिया के कल्कि भगवान, ये अभी 8 भगवान है यहां, पूरा टीवी देख रही है पूरी। और बोले आप लोग डिसाइड करो आप में से कौन भगवान है। एक दूसरे को ऐसा गाली देने लगे, मारपीट होने लगा, पूरी दुनिया देख रही है भगवान के बीच झगड़ा। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये नहीं भगवान भगवान के ऊपर, अवतार के ऊपर लड़का झगड़ा के कौन असली अवतार है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश कर रहा है इस दुनिया में, निश्चित रूप से ईर्ष्या करेगा दूसरे भगवान से, तथाकथित भगवान से। और जब उसे कोई कहेगा कि कृष्ण भगवान है, बोले उससे भी मैं ईर्ष्या करता हूं, फिर खास करके कृष्ण से, क्योंकि वो तो 16,108 रानियों के साथ घूमता है और हमको कहता है कि सिर्फ एक पत्नी है, ज्यादा नहीं। वो रासलीला करता है और हमको बोलता है सब लीला वीला नहीं करेगा, चुपचाप ठीक ठाक रहो, शुद्ध रहो, नीति नीति का पालन करो, नैतिक धर्म जियो। क्यों ईर्ष्या नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का नाम सुन के जिसको आत्मतत्व नहीं है। अवश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, इसीलिए ईर्ष्या, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे को निचोड़ के खत्म करने वाले। और दिखाते भी हैं दोस्ती, तो वो दोस्ती भी क्या, सिर्फ उस तरफ घुड़, पीछे से मैं चाकू मारूंगा, सिर्फ मुड़ जा तो उस तरफ देख बस। एक दूसरे पे प्रेम और ट्रस्ट, विश्वास, प्रेम और विश्वास हो ही नहीं सकता ऐसे समाज में जहां हर एक व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मालूम है इस तरफ घुमा तो पीछे से चाकू मारे गए, दोनों हाथ मिलाते, हाथ मिलाने का किसी ने, एक व्यक्ति ने मुझे बताया क्यों हाथ मिलाते थे पहले। ये हाथ मिलाने की प्रथा वैदिक संस्कृति नहीं है, हाथ मिलाना इसलिए, देख भाई बंदूक नहीं रखा, दो खुला है, वो भी बोलता है मेरा हाथ भी खुला है, कुछ नहीं रखा, ठीक है पकड़ के ही बातचीत करेंगे हम लोग दोनों। तो जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक निश्चित रूप से प्रेम और विश्वास हो ही नहीं सकता। पर जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तब एक्चुअली हम लोग इसे परे जाएंगे। ये 3 श्लोक, श्लोक नंबर 2, 3 और 4, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादा समय नहीं है, कि ये आप ध्यान से पढ़िए इनके तात्पर्य को। सुखदेव गोस्वामी के पहले वचन है ये, पहला वचन परीक्षित महाराज को धन्यवाद देने के बाद कि आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, और बोल रहे हैं कि जो कान में जाएगा वही हृदय में भरेगा, वही तुम्हारे मन में भरेगा। दुर्भाग्यवश जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है वो कान में क्या भरते हैं, जो कान में भरोगे वही मन में भर जाएगा। बार बार फिल्म के बारे में सुनोगे तो फिल्म का हीरो तुम्हारे मन में हमेशा आएगा, बार बार एक पॉलिटिशियन के बारे में सुनोगे वो मन में आएगा। जिस चीज के बारे में कान से भरोगे तुम्हारा मन का बॉटल वही भरने वाला है, वही तुम्हारे स्मरण होगी, वही तुम्हारे विचार होंगे। तो क्या सुन रहे हैं, क्योंकि जो सुनते हैं मन हमारा मग्न हो जाता है, मन को मग्न करना चाहिए हमेशा। मन माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा अर्जुन को, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करना है तुम्हें, पर युद्ध करते वक्त सोचो किस लिए कर रहे हो। तो पहला दो तीन चीज है, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति और एक भौतिक व्यक्ति, इसमें क्या अंतर है? तीन चीजों में अंतर है, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति और एक भौतिक व्यक्ति में। सिर्फ आप टेस्ट उसका परीक्षा लेना चाहते हो कौन आत्म साक्षात्कारी है और कौन भौतिक व्यक्ति है, तो ये थ्री पॉइंट फॉर्मूला। एक उसकी क्रियाएं क्या है, दिन भर की क्रिया क्या है, दूसरा उसका मन किस चीज में मग्न है, और उसका बुद्धि किस चीज के लिए सतर्क है, चौकन्ना है, कॉन्शियस अलर्ट। एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन एंड अलर्टनेस, एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द माइंड, अलर्टनेस ऑफ द इंटेलिजेंस। पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मन किसमें मग्न है? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, चौबीस हजारों चीज सुनते रहते हैं, उनका मन हमेशा मग्न रहता है भौतिक चीजों में, भौतिक विषयों में। ऐसे लोग जो मरने वाले हैं, वो खुद मरने वाले हैं, तो तुमको क्या बचाएंगे। और जहां तक क्रियाएं, वो तीसरे श्लोक में निद्रया हरियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ या गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में और रत रहने में, तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों का पालन में बीतता है। रात बीतता है या सोने में या मैथुन में या सूक्ष्म रूप के मैथुन जीवन में, टीवी देखने में एक प्रकार का, वो भी एक मैथुन जीवन है, सूक्ष्म मैथुन जीवन, क्योंकि वहां इंद्रियों को तृप्त करने का एक मौका मिलता है। पूरा दिन भर टीवी या वीडियो, रात भर फिल्म देखते रहते हैं, और सोया या फिर मैथुन या फिर सोना, और दिन भर दिवाच अर्थे ई हया राजन, पैसे कमाने में, कैसे कमाने में, कमाने में, कमाने में। क्यों? कुटुंब भरने नवा, परिवार संभालने में, ताकि मैं ईश्वर बने रहूं, नियंत्रण करते रहूं, क्योंकि पैसे के बिना लात मार के भगा देंगे, पैसा कमाना पड़ेगा, नहीं तो समाज में सब जगह से लात मार जाएगा, सम्मान नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा है, इफ मनी टॉक्स एवरीवन वॉक्स, जब पैसा बोलता है तो सब चलते पीछे पीछे। यस्यार्थः तस्य मित्राणि, यस्यार्थः तस्य बांधवाः, यस्यार्थः सपुमान लोके, यस्यार्थः सच पंडितः। नीति शास्त्र में कहा है यस्यार्थः, जिसके पास पैसा है बहुत सारे मित्र हैं। अरे मालूम है मैं तुम्हारा मित्र हूं, कैसे हो भाई, कितने लोग आते मिलने के लिए, तुम ही सबके शुभचिंतक हो। यस्यार्थः तस्य मित्राणि, यस्यार्थः तस्य बांधवाः, उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अरे तुम्हारे मामा के बेटी के पोता का लड़का का भाई का ये हूं मैं, कोई ना कोई एक रिश्तेदार। यस्यार्थः सपुमान लोके, उसको सब सैल्यूट मारते, बोले सही में आदमी हो तो सक्सेस मतलब ये, बिल गेट्स, उसका थ्री गेट खुलने वाला है, नरक का गेट, उसको कोई नहीं देखता। थ्री गेट्स टू हेल, और उसने ऑलरेडी बिल फाड़ दिया गेट के लिए। हमको उससे ईर्ष्या नहीं है, उसकी निंदा हम नहीं कर रहे। कहने का मतलब यह है, अपश्यताम आत्मतत्वम, करने दो पैसा कमाने दो, हमको क्या है। पर किस गेट में जा रहे हो वो देखो। सो यस्यार्थ स पुमान लोके, यस्यार्थ सच पंडित, जिसके पास पैसा है वो जो भी बोलता है लोग बोलते वाह क्या बोला, सही बोला। कुछ भी बोले वो, कुछ भी बड़बड़ करे, सही बोला। और जिसके पास पैसा नहीं है, भगवद गीता भी बोले, बोले क्या बोल रहे, बड़बड़ करता है, टाइम नहीं है, टाइम। तो दिन भर पैसे कमाने में और समाज परिवार को पालने में, और रात भर सूक्ष्म मैथुन और स्थूल मैथुन में या सोने में, इसी तरह से पूरा जीवन चला जाता है। पूरा जीवन इसी तरह से चला जाता है। इसका मतलब क्या गृहस्थ नहीं बने? नहीं, अर्जुन भी गृहस्थ था, कितने सारे महान आचार्य हुए सब गृहस्थ थे, पर लक्ष्य को नहीं थे। वो तीसरा श्लोक बताता है। तो वो हो गया क्रिया कैसे थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़कर महाप्रभु के पास आने के लिए इच्छा कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक खत भेजा। जैसे एक स्त्री, शादीशुदा स्त्री, अगर एक उसका कोई एक प्रेमी है जिससे बहुत प्रेम करती है, गृहस्थ जीवन चला रही है, पति की सेवा कर रही है, पर उसका मन हमेशा उस प्रेमी की ओर रहता है, यहां तक कि अगर एक स्त्री का जो शादीशुदा है उसका कोई दूसरा अगर प्रेमी हो तो वो पति की ऐसी सेवा करती है कि पति को शंका भी नहीं लगे कि वो किसी और से प्रेम करती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा, ऐसे जीना चाहिए तुम्हें संसार में, पति की सेवा कर रहे हो, घर की सेवा सब कुछ कर रहे हो, पर तुम्हारा असली प्रेमी जो कृष्ण है उससे मन हटना नहीं चाहिए। थोड़ा भी समय मिला, थोड़ा भी इधर उधर हो गया, टाइम मिला, छोड़ो, उसके पास जाओ और पूरा इंतजाम करो कैसे ऑर्गेनाइज करे, थोड़ा भी टाइम मिला उसके संग, तो हृदय में अपने परम प्रेमी जो है भगवान श्री कृष्ण उनको बैठा के रखो और जो करना है करते रहो। इतने अच्छा से करो कि लोगों को नहीं समझे कि नहीं 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 हरे कृष्ण में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा, देखो क्या हालत हुआ उसका, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता ठीक से, नहीं। और अंत में चौथे श्लोक में कहते हैं सतर्कता, अलर्टनेस, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। अरे सतर्क नहीं होता है आदमी, जो सतर्क होता है वो बहुत चौकन्ना होता है, थोड़ा भी कुछ, जैसा कमांडोज लोग होते हैं, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के बगल में कमांडो लोग चलते हैं, कैसा सतर्क रहते हैं, टक 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 देखते रहते हैं, कोई भी थोड़ा अजीब इधर उधर किया तो कौन है तू, कहां से आया, सतर्क रहते हैं वो लोग। दे हैव बीन ट्रेन टू बिकम अलर्ट एंड नोटिस एनीथिंग। और सतर्कता किस चीज में होनी चाहिए, समय चला जा रहा है, समय चला जा रहा है, किस चीज का आश्रय ले रहे हो। मनुष्य योनि मतलब माया से लड़ाई, प्रकृति से लड़ाई, मम माया दुर्त्यया, यह लड़ाई जितना बहुत मुश्किल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए व्यक्ति समझता है साइंस का मैं टेक्नोलॉजी का आश्रय लूंगा, मेरे लॉयर का आश्रय लूंगा, मेरे डॉक्टर का आश्रय लूंगा, मेरे धन का आश्रय लूंगा, मेरे पति पत्नी बच्चे ये लोगों का आश्रय लूंगा, इनमें से कोई भी एक आपको बचा सकता है मृत्यु के मुंह से। मूर्खता, पश्यन्नपि न पश्यति, अरे सब लोग जिसको ऐसे आश्रय लिए निराश्रय होकर मर गए, पश्यन्नपि देख रहा है पर देखता नहीं है, देख रहा है पर देखता नहीं, आंखों के सामने हो रहा है पर सतर्क नहीं रहता वो। और यह माया की लड़ाई से जीतना है तो एक ही तरीका है, सतर्क रहो, देखो किसने जीता, कौन जीतेगा, जो पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ले लिया है, परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति कोई निश्चिंत है, जो सांप काटना है काटने दो, वो उसका काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। सुखदेव गोस्वामी, आप अपना काम करो, करो कथा सुनाओ, और भगवान अपना काम करेंगे, योग क्षेम वहां हम को ले लेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, चिंता मत करो। तो सतर्कता, तो इस तरह से ये तीन श्लोकों में प्रभुपाद जी ने के सुखदेव गोस्वामी ने और प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य में तीन चीज बताया है, हमारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध च, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यत करोषी यद अश्नासी यद जुहोषी ददासी यत यद तपस्या कौंतेय तत् कुरुषो मदर्पणम्। जो भी हम कर रहे हैं, खाते पीते जो भी करते हैं, कैसे उसको कृष्ण भावनामृत कार्य में जोड़ दे। कार्य बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेतना बदलनी है, किसके लिए कर रहे हैं। और दूसरा, हमेशा अपने मन को कर्णों के द्वारा कृष्ण रसायन का पान करते रहे, नित्यम भागवत सेवया। और चौथा तीसरा, बुद्धि हमेशा सतर्क रहे, समय चला जा रहा है, किस चीज का हम आश्रय ले रहे हैं, कौन चीज हमें सच्चा आश्रय दे सकता है, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं, और कौन चीज हमें निराश्रय कर देगा, उसके लिए हम लोग कितना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। इस चीजों को सतर्क रखना चाहिए, देखते देखते समय चला जाएगा, काल ऐसा चला जाता है देख ही नहीं पाते हम लोग, देखते 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 आंटी अंकल हो गए, देखते देखते दादा दादी हो गए, देखते देखते एक फोटो बन जाएंगे दीवार के ऊपर बस, एकदम ऐसा समय चला जाता है, देखते देखते चला जाएगा। तो क्रियाएं, मग्नता एंड सतर्कता, एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन एंड अलर्टनेस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना का मतलब है हमारी क्रियाओं को भौतिक से आध्यात्मिक बनाना, कृष्ण को केंद्र में रख के मन को हमेशा कृष्ण में लगाए रखना। जो भी मोल्ड अवर एक्टिविटीज इन सच ए वे दैट हियरिंग एंड चैंटिंग इज द सेंटर ऑफ अवर लाइफ। अपने जीवन को हम लोग को ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम हमेशा केंद्रित रहे, वो उसको प्रामुख्यता दे। और तीसरा, हमेशा सतर्क रहना चाहिए समय के बारे में, कब होगा वो, जब हम सुनेंगे सदगुरु से, शास्त्रों से और भक्तों से, बार बार सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा। केयरफुल, किस चीज से सतर्क रहना चाहिए, माया में मत पड़ जाओ, वो झूठी आश्रय दिलाती है, इसका आश्रय ले लो, इसका आश्रय ले लो, इसका आश्रय ले लो, नहीं चाहिए हमें, हमने सुना है, हम सतर्क हैं, ये सब आश्रय नहीं देने वाला। सच्चा आश्रय है भक्तों का संग, सच्चा आश्रय है जहां भी हरि कथा हो रही है। इसीलिए सुखदेव को परीक्षित महाराज ने सब छोड़कर, सतर्क होने के कारण जैसा नोटिस मिला उनको तुरंत सब कुछ छोड़ दिए और वहां आए गंगा जी के तट पर, भगवान के चरण कमलों का आश्रय, भक्तों का आश्रय और हरि कथा का आश्रय। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी, जीव गोस्वामी बताते हैं इसके तात्पर्य में कि इनडायरेक्टली ये तीन श्लोक बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए हमें, क्या भक्तों से, भक्तों को किस चीज से सतर्क रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भौतिक कार्य, भौतिक मग्न मन को, और सतर्कता न होना, नॉट बीइंग अलर्ट, पश्यताम अपि पश्यन्नपि न पश्यति। और बाद में कल हम चर्चा करेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए पर करना क्या चाहिए महाराज, वो अगले श्लोक में, पांचवां श्लोक, कल हम उसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कल का श्लोक, कल हम वो चर्चा करेंगे। तो क्या करना चाहिए, ये था क्या नहीं करना चाहिए मृत्यु के समय, क्या क्या कर्तव्य है हमारा, और कल बताएंगे करना क्या चाहिए, शरीर किसमें लगना चाहिए, मन किसमें लगना चाहिए, बुद्धि किसमें लगना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लेंगे।